ओम शांति। राजीव के तीसरे सत्र में आज हम परमात्मा मिलन की विधि के बारे में समझेंगे कि हम उस परम पिता परमात्मा से कैसे मिलन मना सकते हैं, उनकी याद में मन और बुद्धि को कैसे एकाग्र कर सकते हैं। भक्ति में तो परमात्मा की याद में मन लगाने के लिए हम अनेक प्रकार के क्रियाकांड करते रहे हैं, अनेक प्रकार की भक्ति के साधन सामग्री का आधार लेते रहे हैं, लेकिन यहां जो योग आप सीखने जा रहे हैं, जो स्वयं परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को सिखाया है, वो राजयोग का अभ्यास कैसे करना है। राजयोग का अर्थ ही है कि जिस योग अभ्यास से हम कर्मेंद्रियों का राजा बन सकते हैं, कर्मेंद्रियों के द्वारा हम यथार्थ कर्म कर सके, ऐसा हमारा कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल हो, उसका नियमन हो। पूर्व दो सत्र में दो मूल सत्यों को आपने समझ लिया है, जिसके आधार पर योग है कि हम स्वयं कौन हैं और वो परम शक्ति परमात्मा कौन है। अगर ये दोनों ही सत्र आपने ध्यान पूर्वक किए हैं तो जरूर आपको अब स्पष्ट होगा कि हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा हैं, जो देखने में आ रहा है वो शरीर है, जो तत्वों से बना है, जड़ है। हम इस शरीर को धारण करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है। और कल जो आपने द्वितीय सत्र किया है उससे दूसरा सत्य सिद्ध स्पष्ट हुआ कि परमात्मा कौन है। भक्ति में तो भावना से अनेकों को भगवान हम समझते रहे, पर सत्य क्या है, कल वो सत्य आपने समझा है कि परमात्मा एक है, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है, कल्याणकारी शिव पिता हैं, जो सर्व गुण और सर्व शक्तियों के सागर हैं, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। अब आपको स्पष्ट है कि कोई भी शरीरधारी मनुष्यात्मा को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। हम मनुष्यात्माएं परमात्मा जैसे ज्ञानवान गुणवान बन सकते हैं, परंतु परमात्मा नहीं बन जाते हैं। परमात्मा नहीं बन सकते हैं, परमात्मा कोई बनता नहीं है, अनादि अविनाशी एक परम आत्मा है ही, कोई नए परमात्मा तैयार नहीं होते हैं। स्पष्ट है कि जो भी साधु सन्यासी हैं, ऋषि मुनि हैं, गुरु विद्वान पंडित आचार्य संत महंत जो भी हैं, वो महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। और जो भी धर्म स्थापक हुए हैं, चाहे इस्लाम धर्म के अब्राहम हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, यहूदियों के हजरत मूसा हैं, क्रिश्चियनों के जीसस क्राइस्ट हैं, गुरु नानक जी हैं, गौतम बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, शंकराचार्य जी हैं, ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है, ये धर्मात्माएं हैं। और ये भी अब आपको स्पष्ट है कि जिन भी देवी देवताओं की हम पूजा करते रहे हैं, चाहे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश है, श्री लक्ष्मी नारायण है, श्री राम सीता है, श्री राधे कृष्ण है, श्री अम्बा दुर्गा सरस्वती हैं, श्री गणेश हनुमान महाकाली हैं, मतलब जिन भी देवी देवताओं की हम पूजा करते रहे हैं, वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो एक ही है, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। तो अब आप देखिए कि हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा हैं, परमात्मा भी परम चैतन्य शक्ति है, न हम भौतिक है न परमात्मा भौतिक है, अंडरस्टूड है। आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन, कोई प्राकृतिक शक्ति या कोई शारीरिक क्रिया के माध्यम से नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा भौतिक नहीं है। परमात्मा कोई शरीरधारी नहीं है, ये कोई शारीरिक मिलन की बात नहीं है। परमात्मा के साथ मनोमिलन है, बुद्धि का मिलन है, स्नेह मिलन है, कोई भौतिक मिलन की बात नहीं है। जैसे आप और हम मिलते हैं, वो एक मिलन फिजिकल लेवल पर होता है, पर सच्चा मिलन मनोमिलन है, बुद्धि योग का मिलन है, स्नेह मिलन है। इसलिए जैसे एक वक्ता और श्रोताओं के बीच संपर्क प्रकाश शक्ति और ध्वनि शक्ति के माध्यम से होता है। अगर यहां घना अंधेरा हो और ये साउंड सिस्टम ना हो, मैं बोलूं ही नहीं तो मेरे और आपके बीच जो संपर्क स्थापित होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। हम टेलीफोन के द्वारा एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। और आजकल हम मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन केवल मन और बुद्धि से ही हो सकता है। इसलिए प्रसिद्ध योग शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता में भी स्पष्ट कहा है कि मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, मैं बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। अब हम हरेक देखें, हमने अपने मन और बुद्धि कहां लगा कर रखे हैं। हरेक अपने आप को चेक करिए, हमने अपने मन बुद्धि कहां आसक्त करके रखे हैं। हमने तो अपने मन और बुद्धि व्यक्तियों में, वस्तुओं में, वैभव में, व्यसनों में, बातों में लगा के रखे हैं, और फिर परमात्मा मिलन के लिए हम बाह्य मेहनत करते रहते हैं, क्रियाएं करते रहते हैं। तो राजयोग में सबसे पहली बात, इसमें कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है, इसमें कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं। अक्सर योग के नाम पर लोग आसन प्राणायाम की, व्यायाम की, देह दमन की हट क्रियाएं करते रहते हैं, वो फिजिकल योग है, फिजिकल हेल्थ के लिए है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, तंदुरुस्ती के लिए भला आप रोज आसन करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, वो शरीर के लिए। पर जहां तक परमात्मा से योग लगाने की बात है, इसमें शारीरिक क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं। यहां खुद आप अपने आप को देखिए, बिगर आसन आराम से कुर्सी पर आप बैठे हैं, फिर भी एक घंटे में अपने आप को ऑब्जर्व करिए कितनी बार पांव ऊपर नीचे होते, कितनी बार हिलते रहते। अगर आप सबको आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो हाँ, योग परमात्मा से लगने के बजाय शरीर से ही लग जाएगा। आप यही सोचते रहेंगे कि कब ये घंटा पूरा हो तो हम इस आसन से छूटे। गॉड कॉन्शियस बनने के बजाय आप और ही बॉडी कॉन्शियस बन जाएंगे, क्योंकि हमें रोज आसन लगाकर बैठने का अभ्यास नहीं है। एक सिंपल पलथी मारकर भी हम नहीं बैठ पाते। अब हमारे शरीर भी ऐसे कमजोर रोगी बन गए हैं, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, पांव दुखते हैं। हम एक सहज स्थिति में भी नहीं बैठ पाते हैं। इसलिए राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि सहज स्थिति में बैठना है। आप कुर्सी पर बैठिए, सोफा पर बैठिए, गद्दी पर बैठिए, धरती पर बैठिए, जैसी आपकी फिजिकल कंडीशन, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है। लेकिन जब भी आप परमात्मा की याद के लिए बैठे, योग अभ्यास के लिए बैठे, मन से अटेंटिव होकर बैठना, फिजिकली रिलैक्स, मेंटली अटेंटिव होकर बैठना। क्या अटेंशन रखना है कि ये एक घंटा, दो घंटा, ये आधा घंटा मैं परमात्मा मिलन के लिए बैठी हूं, प्रभु स्मृति के लिए बैठी हूं, परमात्मा चिंतन के लिए बैठी हूं। अभी मुझे और बातें नहीं सोचनी है, इस अटेंशन से बैठे और अपने आप को समझाइए कि जीवन की अन्य अनेकानेक बातें सोचने के लिए, फिर वो घर गृहस्थी की बातें हैं, नौकरी धंधे की बातें हैं, समाज संसार की बातें हैं, शरीर की, परिवार की बातें हैं, ये अन्य अनेकानेक बातें सोचने के लिए हमारे पास बाकी के 22 घंटे हैं। बाकी के 22 घंटे हैं। ये नियम बनाइए, ये लक्ष्य बना लीजिए कि प्रतिदिन 2 घंटा, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा परमात्मा मिलन के लिए हैं, उनको याद करने के लिए हैं, प्रभु चिंतन के लिए हैं। ये लक्ष्य बनाए। इसलिए राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है। आजकल सभी आसन प्राणायाम सीखते हैं। हो सकता है आप में से भी कई घंटा, 2 घंटा पद्मासन लगाकर, अर्ध पद्मासन लगाकर, वज्रासन लगाकर स्थिर बैठ भी सकते होंगे। परंतु आप सोचिए, आप शरीर से आसन लगाकर स्थिर बैठ गए, मन परमात्मा में आसन्न नहीं हुआ, मन परमात्मा की याद में मग्न नहीं हुआ, केवल बाह्य शरीर से स्थिर बैठ गए, तो क्या फायदा है? तो क्या फायदा है? हमें तो मन परमात्मा में मग्न करना है, हमें बुद्धि परमात्मा से जोड़नी है, हमें मन और बुद्धि को शुद्ध और शक्तिशाली बनाना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मस्तक के आसन पर आप आत्मा विराजमान है ही, अब और कोई नया आसन लगाने की जरूरत नहीं है। मस्तक आसन पर आप बैठे ही हैं, अब आवश्यकता है मन और बुद्धि परमात्मा में आसन्न करने की, मन और बुद्धि परमात्मा में स्थित करने की आवश्यकता है। इसलिए राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है। दूसरी बात लोग सोचते हैं, पूछते हैं कि योग में हम क्या करें? सहज स्थिति में बैठ गए, फिर हमें क्या करना है? भक्ति में तो परमात्मा की याद के लिए कोई माला फेरते हैं, कोई मंत्र रटते हैं, कोई मुख से आरती भजन गाते हैं। राजयोग में हमें क्या करना है? भाइयों और बहनों, राजयोग में कोई औपचारिक क्रियाएं भी नहीं। इसमें न रटना है, न जपना है, और न ही इसमें मुख से कुछ गाना बजाना, आवाज नहीं करना है, क्योंकि रटना, जपना औपचारिक क्रियाएं। हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं, क्या हम उनके नाम की माला फेरते हैं कि महेश भाई, हम ऐसा कुछ रटते हैं? नहीं, हम उन्हें नेचुरल याद करते, हम उनके बारे में चिंतन करते, हम उनकी स्मृति में रहते। तो परमात्मा की याद के लिए भी हमें ये रटने जपने की औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो देहाभिमान के कारण हमारा मन सहज परमात्मा में नहीं लगा, तो समय प्रति समय जो धर्मात्मा महात्माएं हुए, उन्होंने अलग अलग नए नए तरीके बताए कि चलो इस प्रकार करके देखिए मन लगता है। ये उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि इस प्रकार प्रयास करके देखिए, पर अपने आप को चेक करिए कि रिजल्ट क्या है। हम माला फेरते हैं, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो यही है ना कि माला फेरते रहते हैं और मन भी स्थिरता रहता है, क्योंकि जो क्रियाएं औपचारिक है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, मन उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता है, इसलिए वो भटकना शुरू करता है। आप माला फेरते रहेंगे और मन भी फिरता रहेगा, मंत्र रटते रहते हैं, मन भटकता रहता है। इसलिए इवन भक्ति में भी आप देखिए, ये कबीर जी ने स्पष्ट कहा है, चित्र में बताया है, ये कबीर जी ने कहा है कि माला फेरत युग हुआ, गया न मन का मैल रे। इसलिए उन्होंने खुद सजेस्ट किया है कि हाथ का मण का छोड़ दे, मन का फेर। ये केवल बाह्य हाथ से माला फेरने की बात नहीं है, मन बदलने की बात है। जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, हमें मनोस्थिति चेंज करना है। अब तक हम खुद को देह समझते रहे, इसलिए देह का चिंतन करते रहे, तो मन बॉडी कॉन्शियस बन गया, मन बहिर्मुखी बन गया है, मन संसाराभिमुख बन गया है। इसलिए आप देखिए, हमें दुनिया के देह के, देह संबंधों के, दुनियावी वैभव पदार्थों के ही विचार आते रहते हैं, क्योंकि अब तक हम वही सोचते रहे। अब हमें परिवर्तन करना है, अब हमें परिवर्तन करना है, मन अंतर्मुखी बनाना है, मन परमात्मा भीमुख लगाना है। तो ये मनोस्थिति बदलने की बात है, मनोस्थिति चेंज करना है। इसलिए प्रथम लेसन में राजयोग का प्रथम अभ्यास आत्मचिंतन का सिखाया गया, क्योंकि जब तक हम आत्मभिमानी नहीं बनते हैं, जब तक हम स्व में एकाग्र नहीं हैं, हम परमात्मा से भी जुड़ नहीं सकते। इसलिए राजयोग का पहला अभ्यास सोल कॉन्शियस बनना है, आत्मभिमानी बनना है, अंतर्मुखी बनना है। इसलिए दूसरा अभ्यास परमात्मा भीमुख बनना है, परमात्मा चिंतन करना है। तो राजयोग में न माला फेरनी है, ना ही इसमें कोई मंत्र रटना है। अक्सर लोग कोई ना कोई मंत्र लेते हैं और फिर वो रटते रहते हैं, परंतु आपने देखा होगा कि कई बार जिस मंत्र को हम रटते हैं, हम उस मंत्र के अर्थ को भी नहीं समझते, उसके अर्थ को भी नहीं समझते। कई धार्मिक प्रसंगों में, धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक अनुष्ठानों में ब्राह्मण आते हैं, पंडित आते हैं, श्लोक बोलते हैं, बताइए कितने लोग अर्थ समझते, कितने लोग अर्थ समझते। जब अर्थ नहीं समझते हैं हम अभ्यास क्या करेंगे, अनुभव क्या करेंगे। इसलिए राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हमें मंत्र सिर्फ रटना नहीं है, हमें मंत्र के अर्थ को समझकर उसे आचरण में लाना है, मंत्र के अर्थ को जीवन में धारण करना है, न कि सिर्फ शब्द मंत्र रिपीट करते रहना है। जैसे कि हम रटते हैं ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हम रटते हैं बहुत भावना से, हम उस शिव परमात्मा को नमन भी करते हैं, पर क्या फिर सारा दिन हम उस शिव पिता की आज्ञा पर चलते हैं, फिर सारा दिन हमें याद भी नहीं रहता है कि वो शिव पिता कौन है, हम कौन हैं, वो कब आते हैं, हमारा उनसे क्या नाता है, हमें याद भी नहीं रहता है। तो इसका क्या अर्थ है? आपका बेटा, मान लो आपका बेटा रोज सुबह उठकर आपको नमन करता है, पांव लगता है, आपको गुड मॉर्निंग कहता है, पर फिर सारा दिन वो आपकी एक भी बात मानता नहीं है, आप अपने बच्चे को क्या कहेंगे, आप अपने बेटे को क्या कहेंगे कि भाई ये औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है, ये पांव पड़ने की, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, पर मैं जो कहता हूं वो तुम करो, मेरी बातों को मानो, मेरे कार्य में मददगार बनो। तो भाइयों और बहनों, परमात्मा से अगर हमारा सच्चा प्यार है, उनके लिए हमें सच्चा रिस्पेक्ट है, सम्मान है, ईश्वर के प्रति हमारा सचमुच समर्पण है, तो हम उसकी आज्ञा पर चले, हम उनके ज्ञान को, गुणों को, उनके श्रीमत को माने, हम उनके कार्य में मन वचन कर्म से, तन मन धन से मददगार बन जाएं, वो हमारा सच्चा प्यार है, वो हमारा प्रैक्टिकल समर्पण है। इसलिए हमें कोई शब्द मंत्र रटना नहीं है, राजयोग में मंत्र के अर्थ को समझना है और आचरण में लाना है। कोई ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोलने की, कहने की बात नहीं है, कोई रटने की बात नहीं है, कोई ओम शांति लिख लिख करके नोटबुक भरने की बात नहीं है, हमें ओम शांति बनना है, हमें शांत आत्मा बनना है। इसलिए इसमें रटना जपना नहीं है और ना ही इस राजयोग के अभ्यास में हमें कुछ भी आवाज नहीं करना है। अक्सर हम जोर जोर से भजन कीर्तन करते हैं, जोर जोर से आरती गाते हैं। और आप सब जानते हैं चातुर्मास होते हैं, श्रावण मास होता है, अधिक मास होता है, हर वार त्योहार तिथि प्रसंगों पर तो हम माइक लगाकर रात दिन जोर जोर से भजन गाते हैं, आरती करते हैं। कितना आवाज हम करते हैं, कितना आवाज हम करते हैं, जबकि सत्य ये है कि मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। ये आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। अब आप जानते हैं कि परमात्मा इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते हैं। वो साइलेंस वर्ल्ड है, ये टॉकी वर्ल्ड है, वहां ये मुख का आवाज नहीं पहुंचता है। परमात्मा को कौन सा आवाज पहुंचता है? कौन सा आवाज? अंतर मन का आवाज परमात्मा को पहुंचता है। दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता है, मुख का आवाज नहीं पहुंचता है। इसलिए राजयोग में कुछ भी गाना बजाना आवाज नहीं करना है। हम साइलेंस में बैठते हैं और अंतर मनस से, अंतर्मुखी मनस से, आत्मभिमानी मनोस्थिति से हम उस पिता को याद करते हैं। दिल के सच्चे प्यार से हम उससे याद करते हैं। वो प्यार पहुंचता है, वो याद पहुंचती है। इसलिए आरती शब्द वास्तव में ओरिजिनली आर्त वाणी है। आर्त वाणी अंतर की वाणी से परमात्मा को याद करना है। पर वो मन ही मन हम याद नहीं कर पाए देह अभिमान के कारण, इसलिए हम मुख से गाने लगे, आवाज करने लगे। यहां आप देखते हैं कि हर कार्यक्रम के आरंभ में या अंत में, योग अभ्यास के आरंभ या अंत में, हम एक सिंपल ईश्वरीय ज्ञान से बना हुआ परमात्मा की महिमा का गीत बजाते हैं। हमारा मन परमात्मा के संबंध में ड्राई हो गया है, शुष्क हो गया है। ये गीत मन में भाव जगाते हैं, संगीत उस भाव को गति देते हैं। आरंभ में ये सहायक है, अनिवार्य नहीं है। हम लोग तो साइलेंस ट्यून बजाते हैं और दिल के प्यार से उस पिता को याद करते हैं। जब आपका अपना प्यार परमात्मा से हो जाएगा, आपका अपना निश्चय परमात्मा से हो जाएगा, फिर आपका मन ही गीत गाएगा, मुख से गाने की जरूरत नहीं। तो दूसरी बात आपको स्पष्ट है कि राजयोग में कोई बाह्याचार नहीं है, कोई औपचारिक क्रियाएं नहीं हैं, कोई आवाज नहीं करना है। तीसरी बात, अक्सर लोग सोचते हैं कि हम मन कहां लगाएं, हम योग कहां लगाएं, हम सामने क्या रखें। भक्ति में तो मूर्ति रखते हैं, चित्र रखते हैं, फोटो लगाते हैं, दीवा जलाते हैं, बिंदु पर मन लगाते हैं। हमें योग कहां लगाना है, हम सामने क्या रखें। बहनों और भाइयों, अब मैं आप सबसे ही पूछना चाहूंगी, हमें मन कहां लगाना है। अब आप सभी सिर्फ भक्त आत्माएं नहीं हैं, पिछले दो दिन से आप ईश्वरीय ज्ञान सुन रहे हैं, अब आपने स्वयं का आत्मा परिचय पाया है, उस परम पिता परमात्मा का सत्य परिचय आपने पाया है, अब आप सभी भी ज्ञानी आत्माएं हैं, अब आप विवेक से बताइए हमें योग कहां लगाना है, मन किससे लगाना है, किससे लगाना है। बहने बताओ, हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से या मूर्ति से योग लगाना है। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। चलो, भक्ति में हम भगवान को नहीं जानते थे, भले हम परमात्मा को मानते थे पर यथार्थ रूप से जानते नहीं थे, तो हरेक ने अपनी अपनी भावना से अपने अपने इष्ट के मूर्ति चित्र फोटो रख दिए। पर अब हमें परमात्मा का सत्य परिचय मिला है कि परमात्मा तो एक ही है, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसलिए अब हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। अनुभव है आप सबको, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े हैं और फिर भी मन में दूसरी ही मूरतें घूमती रहती, वहां भी मन एकाग्र नहीं होता है। तो आखिर कब तक हम इन साधनों का आधार लेंगे। अब आपको सत्य परिचय मिला है, अब हमें एक कदम आगे बढ़ना है। अब भक्त आत्मा से अब आप ज्ञानी आत्मा बने हैं, अब ज्ञानी आत्मा से योगी आत्मा बनना है। हमें योग उस ज्योति बिंदु कल्याणकारी शिव पिता से लगाना है। इसलिए, और आप देखिए, आप अपने प्रेमियों को, अपने स्नेहियों को, अपने प्रिय लोगों को याद करते हैं, क्या उनका फोटो हो तो याद कर सकें, ऐसा है क्या? ऐसा है नहीं। हम कहते हैं कि मुझे अपने प्रिय के बाह्य फोटो की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे मन में ही छपे हुए हैं, मुझे उनके बाह्य चित्र की जरूरत नहीं। परमात्मा की याद के लिए हम इतनी चीजों का आधार क्यों लेते हैं? अब हम आगे बढ़ सकते हैं। जो अभ्यास साधन के आधार से क्रियाओं से करते थे बहनों और भाइयों, अब परमात्मा को ज्ञान बल से मन और बुद्धि से याद करना है। कोई क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है, हमें मन ही मन परमात्मा का चिंतन करना है, उससे याद करना है, उससे प्यार करना है। इसलिए राजयोग की एक ही वाक्य में सिंपल व्याख्या है कि परमात्मा जो है, जैसा है और जहां रहता है वहां मन बुद्धि लगाना है, याद करना है। परमात्मा जो है, क्या है, सारी महिमा, सारा परिचय कल आपको मिला है। वो जैसा है ज्योति बिंदु स्वरूप, और जहां रहता है, कहां रहता है, परम धाम में, उसे याद करना है। सिंपल बात है। इसलिए हम शरीर से यहां बैठते हैं, मन और बुद्धि से हम अपने असली घर परम धाम में जाते हैं और परमात्मा के दिव्य स्वरूप को मन की आंख से देखते हैं और बुद्धि से याद करते हैं। ये राजयोग है। अभी इस हॉल में आप बैठे हैं, अभी इस हॉल में आप सूर्य नहीं देख रहे हैं, पर जैसे ही सूर्य शब्द मैंने बोला, आप सबने क्या किया, क्या किया? मन की आंख से देखा ना, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान है, सूर्य का ज्ञान है, तो आप मन ही मन विजुअलाइज कर सके ना। अब परमात्मा का भी सही ज्ञान हमें है, इसलिए मन की आंख से उस परम ज्योति बिंदु परमात्मा को देखना है और बुद्धि से याद करना है, समझना है, चिंतन करना है, प्यार करना है। उस याद और प्यार में एकाग्र होना, उसे योग कहते हैं, उसे योग कहते हैं। इसलिए हम सभी योगी बन सकते हैं, हम सभी योगी बन सकते हैं। अक्सर जब भी हम भाई बहनों को परमात्मा का ये दिव्य संदेश जब देते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, आप दो दिन से हर सत्र में इस मैसेज को सुन रहे हैं। हम जब भी भाई बहनों को कहते हैं परमात्मा का दिव्य संदेश कि पवित्र बनो, योगी बनो, तो अक्सर लोग सोचने लगते हैं। आप भी सोचते होंगे ना? आप भी सोचते होंगे कि हम पवित्र योगी कैसे बन सकते हैं? हम गृहस्थी हैं, संसारी हैं, हम परिवार में रहते हैं, जिम्मेवारियां हैं, हम योगी कैसे बन सकते हैं? क्यों ये प्रश्न उठता है? क्योंकि हमारे मन में गलत कंसेप्ट है, योग के बारे में गलत समझ है। हम ये मानते हैं कि योगी बनना हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, घर बार छोड़ना पड़े, दुनिया से दूर कहीं जंगल में जाएं, शांत एकांत में जाकर बैठें, तो मन परमात्मा से लग सकता है। हम तो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, हम योगी कैसे बन सकते हैं? और भक्ति में भी अधिकतर जो भी योगी तपस्वी हुए, घर बार छोड़कर हुए। इसलिए लोग सोचते हैं कि हम तो घर बार छोड़ नहीं सकते हैं, हम योगी नहीं बन सकते हैं। परंतु भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है। राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है। हमें घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र योगी जीवन बनाना है। चित्र में देखिए राजयोग हमें क्या सिखाता है। राजयोग हमें ये नहीं सिखाता है कि हमें दुनिया छोड़नी है, घर बार छोड़ना है, नौकरी धंधा छोड़ना है। हमें दुनिया नहीं छोड़नी है। क्या छोड़ना है? देहभान छोड़ना है। देहभान मन की चंचलता का मूल कारण है। इसलिए हमें आत्मा स्मृति में रहना है, सोल कॉन्शियस बनना है। हमें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए न स्थान बदलना है, न ड्रेस बदलना है। कई मेहमान हमें कहते हैं, बहन जी हमें भी दिल करता है कि हम भी यहाँ रह जाएं। यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। इस ज्ञान और योग को साथ ले जाने की जरूरत है। तो आप जहां रहते हैं वहां रहते हुए ज्ञान योग का अभ्यास कर अपने जीवन को योगी बना सकते हैं। कोई ड्रेस बदलने की बात नहीं है। कोई भगवे वस्त्र पहन लेने से या सफेद ड्रेस पहन लेने से हम योगी नहीं बन जाते हैं। केवल ड्रेस बदलने की बात नहीं है, हमें आंतरिक दिल बदलना है, बुद्धि योग बदलना है, हमें अपनी वृत्ति स्मृति को बदलना है। ये आंतरिक परिवर्तन करना है। केवल बाह्य ड्रेस बदल देने से योगी नहीं हो जाते। ये सफेद ड्रेस हमारा यूनिफॉर्म है, सिंपली यूनिफॉर्म है। हर विद्यालय का, हर संस्था का, हर कंपनी का यूनिफॉर्म होता है कि नहीं होता है? ये हमारा यूनिफॉर्म है। हम फुल टाइम सेवा में हैं, इसलिए हम फुल टाइम पहनते हैं। बाकी जो भाई बहने घरों से आते हैं, वे जब क्लास में आते हैं, सेवा में आते हैं, तो सफेद यूनिफॉर्म पहनते हैं। पर मात्र सफेद कपड़े पहन लेने से योगी नहीं हो जाते। हमें अपनी वृत्ति, स्मृति, कृति, प्रवृत्ति को पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ बनाना है। इसलिए हरेक योगी बन सकते हैं। हम गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा के सच्चे ट्रस्टी बन सकते हैं, योगी बन सकते हैं। इस योग अभ्यास का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। सिर्फ पूजा पाठ करके, धूप दीप करके खुश हो जाने की बात नहीं है। अक्सर लोग नियम से सुबह या शाम 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा नियम से पूजा पाठ, भजन कीर्तन, धूप दीप करके खुश हो जाते हैं कि मैं धार्मिक हूं। उनकी भावना संतुष्ट हो जाती, पर उसके आचरण में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। राजयोग का ध्येय सिर्फ नमन, वंदन, पूजन, गायन, दर्शन, कीर्तन करना नहीं है। राजयोग का ध्येय पुजारी से पूज्य, पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनना है। हमें स्वयं महान बनना है। हमारे पिता परमात्मा परमा है, सदा पावन है। हम उनके बच्चे, हम भी कैसे होने चाहिए। हमें भी महान श्रेष्ठ बनना है। इसलिए राजयोग का ध्येय परमात्मा की याद से वृत्तियों को शुद्ध कर प्रवृत्ति को पवित्र और श्रेष्ठ बनाना है। परमात्मा की याद में आप देखिए चित्र में, परमात्मा को याद करने के नाम पर कोई जोर जोर से परमात्मा को पुकारते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, माइक लगाकर चिल्लाते हैं, अल्लाहु अकबर, हे भगवान, ओ गॉड, चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, आवाज नहीं करना है, परमात्मा को पुकारना नहीं है। बताया ना, मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। इसलिए माइक लगाकर चिल्लाना, पुकारना, आवाज नहीं करना है। दूसरी बात, अक्सर लोग कहते हैं हम परमात्मा को याद करते हैं, पर अधिकतर लोग क्या करते हैं, परमात्मा से मांगते रहते हैं, हे भगवान, विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो, मेरा ये काम कर दो। अक्सर हम भगवान से मांगते रहते हैं। राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हमें परमात्मा से मांगना नहीं है, हमें मांगना नहीं है। बताइए क्यों नहीं मांगना है, क्यों नहीं मांगना है? हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम उनके वारिस हैं, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है उनसे प्राप्त करना। हमें मांगने की जरूरत नहीं है, हमें लायक बच्चा बनने की जरूरत है। लायक बच्चे को माँ बाप अपने आप देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? आप सबका अनुभव क्या है? लायक बच्चे के लिए माँ बाप सब कुछ करते हैं। खुद नहीं खाते हैं, नहीं पहनते हैं, लायक बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं। हमें मांगना नहीं है, हमें लायक बच्चा बनना है, परमात्मा के सपूत बनना है। इसलिए योगी बनना माना नया कुछ नहीं करना है। योगी बनना माना कुछ और नहीं करना है, ना माथा मुंडाना है, ना जटा बढ़ानी है, इसमें कुछ भी बाह्याचार नहीं करना है। योगी बनना माना योग्य बनना, योग्य बनना। ईश्वर के बच्चे कहलाने लायक बनना है। परमात्मा के लिए हम कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। क्या खुद के लिए हम ईश्वरीय संतान कहलाने योग्य हैं? है, हमें योग्य बनना है। भाइयों और बहनों, अनुभव करके देखिए, परमात्मा के लायक बच्चे बनते हैं तो उनकी याद से ही प्राप्ति है, कहने की जरूरत ही नहीं। हम उनकी याद में रहते हैं और आत्मा में शक्ति आती है। इसलिए योग में मांगना नहीं है। और तीसरी बात, अक्सर लोग ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बड़े दीन हीन लाचार मजबूर बनकर ईश्वर को प्रार्थना करते रहते हैं, इतनी शक्ति हमें देना। राजयोग में हम परमात्मा को प्रार्थना नहीं करते, हमें परमात्मा को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा खुद ही दाता है। वो खुद ही दाता है, वो दे ही रहा है। हम ही उसकी महिमा गाते हैं, शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सदगति दाता, वर दाता। वो है ही दाता, दे ही रहा है। जो दे ही रहा हो उनको फिर कहना देना देना, ये तो इंसल्ट करना है, ये तो इंसल्ट करना है। भाई दे ही रहे हैं ना, ऑलरेडी दे ही रहे हैं, बार बार कहने की क्या जरूरत है? हमें खुद में चेक करने की जरूरत है। खुद सोचिए, अपने आप में आत्म खोज करिए कि पिता परमात्मा दाता है, वो तो सुख शांति आनंद प्रेम का सागर है, अखुट भंडार है, दाता है, दयालु है, कृपालु है, वो दे ही रहा है। खुद में देखिए ना, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? स्वदर्शन करिए, अपने आप को चेक करिए, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? देने वाला दे रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? उसका कारण ही ये है कि हमारा परमात्मा से योग नहीं है। योग मीन्स कनेक्शन, जोड़, मन बुद्धि परमात्मा से जोड़ना, उनके बारे में सोचना, उसे योग कहते। हमारा परमात्मा से कनेक्शन नहीं है। आपके शहर में पावर हाउस हैं, पर आपको अपने घर में बिजली तो तब मिलेगी ना जब आप कनेक्शन करेंगे। परमात्मा माइट हाउस है, स्पिरिचुअल पावर हाउस है, पर हमारे मन और बुद्धि हमने उनसे नहीं जोड़े हैं। देखिए, हरेक अपने आप को देखिए, हमने अपने मन बुद्धि कहां आसक्त किए हैं? हमने अपने मन बुद्धि को व्यसनों में, विकारों में, व्यक्तियों में, धन में, वैभव में, हमने तो बातों में मन लगाया है। और फिर परमात्मा से प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहते हैं। इसलिए मन और बुद्धि परमात्मा से जोड़ना है। मुख से आरती गा रहे हैं, हाथ से ताली बजा रहे हैं, पर मन और बुद्धि कहाँ है? मन और बुद्धि परमात्मा से जोड़ना है, दिल का सच्चा प्यार परमात्मा से जोड़ना है, तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। इसलिए खुद को आत्मा समझकर मन और बुद्धि परमात्मा से जोड़ना, उनके मनन चिंतन में रहना, उसे योग कहते हैं, उसे योग कहते हैं। दूसरी बात, योग मीन्स रिलेशन, संबंध जोड़ना, परमात्मा से संबंध जोड़ना है, क्योंकि प्राप्ति संबंध से होती है। बच्चा पैदा होते ही वर्षे का अधिकारी बन जाता है, किस आधार पर? रिलेशन के आधार पर। हमें परमात्मा से संबंध जोड़ना है तो हम प्राप्ति वर्षा पा सकते हैं। अब भक्ति में हम क्या करते हैं? संबंधों का सिर्फ वर्णन करते हैं। कौन सा श्लोक बोलते हैं, कौन सी प्रार्थना बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव गाते हैं ना। भक्ति में हम संबंधों का गायन करते हैं। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही। भक्ति में हम संबंधों का वर्णन करते हैं। राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हमें संबंधों का वर्णन, गायन करने की जरूरत नहीं है। क्या बच्चा अपने माँ बाप के सामने बैठकर घर में रोज गाता है क्या? तुम मेरी मम्मी हो, तुम मेरे पापा हो, तुम मेरे दादा हो, ऐसे गाते हैं क्या? गाते हैं क्या? नहीं। बच्चे को परख है, यही मेरे माँ बाप है। बच्चे को निश्चय है, यही मेरे माँ पिता है। गाने की जरूरत नहीं है, हमें निश्चय करने की जरूरत है कि परमात्मा ही मुझ आत्मा के असली माँ बाप है। वही हमारे सच्चे, अविनाशी, कल्याणकारी माँ बाप है, पिताओं का भी वो पिता है, गुरुओं का भी वो गुरु है, पतियों का भी वो पति है, नाथों का नाथ है। हमें ये निश्चय होना चाहिए, हमें स्पष्ट होना चाहिए ये देह के संबंध है, एक जन्म के हैं, विनाशी। ये शरीर छूटेगा, ये संबंध भी समाप्त हो जाएंगे, नए शरीर लेंगे, नए माँ बाप भाई बहन मिलते हैं, तो ये तो एक ही जन्म के है ना। पर हमारे असली अविनाशी माँ पिता परमात्मा है। तो जब आप खुद को आत्मा निश्चय कर उस पिता परमात्मा से जीवन के सर्व संबंध जोड़ेंगे और मन वचन कर्म से फॉलो करेंगे तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। हम हकदार है, याद से ही प्राप्ति है, अनुभूति है, न मांगना है न रिक्वेस्ट करना पड़ता है। इसलिए योग का अर्थ है परमात्मा से संबंध जोड़ना, फॉलो करना, उसको योग कहते हैं। आप यहां आए हैं, आपको कौन याद आते हैं? आप यहां आए हैं, आपको कौन याद आते हैं? दुनिया में लाखों लोग हैं, सभी याद आते हैं। कौन याद आते हैं? जिससे संबंध है, जिसके साथ आप रोज उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, वही तो याद आते हैं। परमात्मा की याद नेचुरल आती रहे, उसकी विधि है परमात्मा से संबंध जोड़ो, फॉलो करो। बस जब हम ये निश्चय कर लेते हैं कि परमात्मा ही मुझ आत्मा के सच्चे माता पिता बंधु गुरु शिक्षक सखा स्वामी सतगुरु है, जब वो ही मेरा सर्वस्व है, तो हर समय हर बात में हर स्थान हर कार्य में ऑटोमेटिक मुझे कौन याद आएगा? कौन याद आएगा? वही याद आएगा ना, क्योंकि वही मेरा सब कुछ है, ये मैंने स्वीकार किया है। इसलिए योग की विधि है परमात्मा से संबंध जोड़ो और निभाओ। और तीसरी बात, परमात्मा दाता है, दे ही रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? बाहर जोर से बारिश हो रही हो, मूसलाधार बारिश हो रही हो, पर आपने अपना लोटा उल्टा रखा है तो भरेगा? हा? हा? समझ गए ना, क्यों प्राप्ति नहीं होती है? क्यों प्राप्ति नहीं होती है? लोटा ही उल्टा है। हा? वो तो दे रहा है पर बुद्धि उल्टी हो गई है, हमारी बुद्धि विपरीत हो गई है, हमारी परमात्मा से प्रीत नहीं रही है। हमारा प्यार तो देह में, संबंधों में, दुनिया में, वैभव में चला गया है। जब हमारी बुद्धि ही विपरीत है तो अनुभव कैसे होगा? इसलिए बुद्धि की प्रीत परमात्मा से जोड़ना है। जितना परमात्मा से प्यार, उतनी एकाग्रता, उतनी एकाग्रता। ये कोई हठ दमन मेहनत की बात नहीं, जितना प्यार उतना मगन हो जाएंगे एकाग्र हो सकेंगे। इसलिए जीवन के सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ना और उनसे जिगरी प्यार करना, उस याद और प्यार में एकाग्र होना, उसे योग कहते हैं, उसे योग कहते हैं। भाइयों और बहनों, अब अपने आप को चेक करिए। बेशक आप परमात्मा को याद करते हैं, पर आप अपने आप को चेक करिए कि हम परमात्मा को याद करते हैं पर कैसे याद करते हैं। कोई सिर्फ नियम से याद करते हैं। हमारा नियम है, हम सुबह शाम 5 मिनट 10 मिनट धूप दीप कर लेते हैं, कुछ आरती भजन गा लेते हैं, बस पूरा हो गया, हम खुश हो गए कि हम धार्मिक है। ना हमें सही ज्ञान है, ना परमात्मा से प्यार है। कोई सिर्फ नियम से याद करते, कोई स्वार्थ से याद करते। हमें परमात्मा से कुछ चाहिए, मतलब है, इसलिए स्वार्थ से याद करते है कि नहीं ऐसा? हाँ, हमें उनसे कुछ चाहिए इसलिए हम उनको याद करते, और जो चाहिए वो पाने के लिए हम उनको लालच भी देते हैं कि इतना भोग लगाऊंगी, इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी, इधर यात्रा करूंगी, उपवास करूंगी, लालच भी देते हैं। सोचिए, हमने ईश्वर को क्या समझा है? हमने परमात्मा के लिए क्या सोच लिया? इतना परमात्मा हल्का है क्या जो लालच से खुश हो जाएगा? वो तो खुश ही है, वो तो दयालु ही है, कृपालु ही है। खुद को ठीक नहीं करते हैं और परमात्मा को लालच देते रहते हैं। सुधारना तो खुद को है ना, इसलिए याद करते हैं पर स्वार्थ से करते। शायद उनसे प्राप्ति ना हो तो हम उनको याद भी ना करें, ऐसे मतलब ही हम हो गए हैं। और कई भय से भगवान को याद करते हैं, उनको डर है, भय है, कहीं मैं मर न जाऊं, मुझे कुछ हो न जाए। उनको डर है कि मेरे गड़बड़ घोटाले खुल न जाए, इसलिए भगवान को याद करते। मेरे पाप फूट न जाए, इसलिए भगवान को खुश करते रहते। भगवान मूर्ख नहीं है, ज्ञान का सागर है। पर मूर्ख हम हैं जो ऐसा करते हैं। कोई भय से भगवान को याद करते, हमें समझ पूर्वक निश्चयात्मक बुद्धि बन प्यार से याद करना है। समझ आपको यहां मिली है, ज्ञान मिला है, आप कौन है, परमात्मा कौन है। सिर्फ भावना की बात नहीं है, सत्य की बात है। सत्य समझना है और उस सत्य से याद करना है। निश्चय, यही मेरे असली पिता है, और जिगरी प्यार, तो आप सहज योगी बन सकते हैं। हम हरेक योगी बन सकते हैं। और लास्ट बात, राजयोग का अभ्यास इतना सहज है, आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं। अक्सर परमात्मा को याद करने बैठते हैं लोग, आंख बंद करके बैठते हैं। हमने देखा लोग मंदिर जाते हैं, कहते हैं हम दर्शन करने जा रहे हैं। हमने देखा वहां मूर्ति के सामने भी आंख बंद करके खड़े रहते। हमने स्कूलों में देखा बच्चों को टीचर जबरदस्ती आंख बंद करवाते हैं। हम क्यों आंख बंद करके बैठते हैं? क्योंकि हमारी समझ गलत है, हमारी मान्यता गलत है। हम ये मानते हैं कि आंखें खुली रहेगी, हमें सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए हम आंख बंद करके बैठते हैं। पर मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, आंख बंद करने के बाद क्या मन नहीं भटकता है? क्या रिजल्ट है? भटकता है, भटकता है। देखो आंखें खुली है, ये चार दीवार के बीच में जो है वो मुझे दिखाई देता है। पर भाई और बहनों, आंखें बंद करने के बाद तो हाँ सारी दुनिया दिखाई देती, जिंदे मरे सब दिखाई देते हैं। इससे सिद्ध है, इससे सिद्ध है कि आंखें नहीं देखती है, मन देखता है। आंखें तो बाह्य देखने का साधन है, कान सुनने का साधन है, मुख बोलने का साधन है, पर आंखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली, कान से सुनने वाली तो मैं आत्मा हूं ना। भल आंखें बंद कर दी पर मन की आंख से मैं देखती हूं, इसलिए आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, मन परमात्मा के प्रति फोकस करने की जरूरत। बुद्धि का दूरबीन परमात्मा के तरफ सेट करने की जरूरत है। आंख बंद खोल की बात नहीं है, मन परमात्मा के तरफ करने की बात है। इसलिए राजयोग में हम आंखें नेचुरल खुली रखते हैं। ना आप आंख बंद करके बैठिए, ना आंखें फाड़ के बैठिए। आंखें फाड़ कर नहीं बैठना है, आंखों पर स्ट्रेस नहीं देना है, मन पर अटेंशन देना है। मन परमात्मा स्मृति में रहे, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, हमें उस मनन चिंतन और स्मृति में रहना है। और एक सिंपल लॉजिक, हमारी आंखें नेचुरल खुली रहती है या बंद रहती है? हमारी आंखें नेचुरल खुली रहती है या बंद रहती? खुली रहती है। आंखें बंद तो कब होती हैं? हाँ, या तो जब नींद आती है या प्रोग्राम ही पूरा हो जाता है तो आंख बंद कर देते हैं। वरना तो आंखें खुली रहती है ना। तो आंखें बंद करना अननेचुरल है, आंखें नेचुरल खुली रखना है, मन बुद्धि बिजी करना है परमात्मा चिंतन में। ये है राजयोग की विधि। आज मैं आपको योग अभ्यास कराऊंगी, इसलिए आप मेरे मस्तक में देखेंगे, मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हैं। इस रूहानी नजर से देखते हुए हम आत्मा स्मृति में स्थित होंगे और फिर परमात्मा को याद करेंगे। अब हमेशा कोई सामने बैठकर योग अभ्यास नहीं करा सकते हैं, इसलिए आप यहाँ देखते हैं कि हमारे हरेक हॉल में, हरेक मेडिटेशन रूम में सर्वश्रेष्ठ योगी ब्रह्मा बाबा का चित्र लगा हुआ है कि जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते हैं, ऐसे हमें भी किसी को भी देखते हुए भी शिव बाबा को याद करना है। हम ब्रह्मा से योग नहीं लगाते हैं क्योंकि ब्रह्मा बाबा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव को याद करते हैं, तो हम भी उस शिव बाबा को याद करते हैं। तो आज मैं आपको योग अभ्यास कराऊंगी, बल इन आंखों से देखने में शरीर आते हैं पर बुद्धि में याद रखना है कि हम आत्मा हैं, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तो सभी व्यवस्थित बैठ जाए। कमर सीधी रख के बैठेंगे, भला कुर्सी सोफा के बैक का सपोर्ट लेना चाहें ले सकते हैं, पर स्ट्रेट बैठिए, सीधे बैठिए। अपना डायरी, पर्स, फाइल, बैग साइड में रख दे, हाथ में गोद में लेके ना बैठे। एक दो से अलग अलग होकर बैठे, टच करके न बैठे। हमें साइलेंस में बैठे हुए मन ही मन कैसे शिव बाबा को याद करना है, उनसे बुद्धि योग जोड़ना है, मैं सजेशंस दूंगी कमेंट्री के द्वारा। आपको मुख से बोलना नहीं है, मन ही मन रिवाइज करना है, जो थॉट में दूं, जो विचार में दूं, मन में रिवाइज करिए, अर्थ समझ कर रिवाइज करिए और उस अनुभव में स्थित होते जाएं। हम शरीर से यहां बैठेंगे, मन और बुद्धि से असली घर परम धाम में प्यारे शिव बाबा को याद करेंगे। कुछ क्षणों के लिए अन्य सभी बातों से अलग हो जाइए। आसपास की व्यक्तियों से, वस्तुओं से साक्षी बन जाइए। स्वयं के मस्तक बीच भ्रुकुटी में खुद के आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा, मस्तक के ऊंचे आसन पर विराजमान हूँ। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मेरा असली घर परम धाम है, जो इस दुनिया से दूर है, पांच तत्वों से पार है। उस अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व में मुझ आत्मा के अविनाशी पिता परमात्मा भी रहते हैं। मन की आंख से ज्ञान नेत्र से उस परम ज्योति बिंदु शिव पिता को देखिए। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता, अनेक जन्मों से भक्ति में मैं आपको खोजता रहा हूँ, तन और मन से भटकता रहा हूँ। अब मुझे आपका सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे स्पष्ट है कि मैं कौन हूँ और आप कौन हैं। प्यारे शिव पिता, आपको पाकर मेरा जीवन धन्य बन गया है। मुझे जीवन का सही ठिकाना मिल गया है। अब मेरा यही लक्ष्य है, प्यारे शिव बाबा, आपके संपूर्ण सत्य ज्ञान को मुझे समझना है और जीवन में धारण करना है। जैसे आप शांति के सागर शांति दाता है, आपकी संतान मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। मेरा स्वधर्म भी शांति है। अब मैं स्वयं शांत रहूंगी और शांति दूत बनकर सर्वत्र शांति फैलाऊंगी। मेरे सदा पावन सर्वशक्तिमान प्यारे बाबा, आपकी याद से मैं आत्मा भी पावन बनती जा रही हूँ। मैं फिर से वो ही शुद्ध सत्य पवित्र आत्मा बन रही हूँ। मैं आपसे योग लगाती हूँ, मैं आपके साथ का अनुभव करती हूँ। मैं शक्तिशाली बनती जाती हूँ। अब मेरा कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल है। अब परिस्थितियां मुझ पर हावी नहीं हो सकती हैं। अब मैं आपका सच्चा प्रतिनिधि बनकर को सुख दूंगा, सबके साथ प्यार से चलूंगा। मुझे यही निश्चय और खुशी है कि मैं आत्मा आपकी ईश्वरीय संतान हूँ। मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं स्वयं चैतन्य शक्ति दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ओम शांति।